क्रमांक 49 सुनीथ सत्यजीदथ विश्वजीत यत् रिपुंजयः बाहद्रथः च भूपालः भाव्या सहस्रवत्सरम् सुनीत सत्यजीदथ विश्वजीत यदरिपुञ्जयः बारद्रथाशुपाला भाव्या सहस्रवत्सरम् एक प्रभु जी और एक माता जी बोलिए। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं, सुनीत सुबल से सुनीत उत्पन्न होगा, सत्यजीत सत्यजीत अथ उससे, विश्वजीत विश्वजीत यत उससे, रिपुंजय रिपुंजय बारहदर्थाः बृहदर्थ की परिपाटी में, च भी भूपाला सारे राजा, भाव्या होंगे सहस्त्रवत्सरम् एक हजार वर्षों तक लगातार। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से हैं, सुनीत से सुबल से सुनीत, सुनीत से सत्यजीत, सत्यजीत से विश्वजीत एवं विश्वजीत से रिपुंजय उत्पन्न होगा। ये सभी पुरुष बृहदर्थ वंशी होंगे और ये संसार पर 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। तात्पर्य, यह जरासंध से प्रारंभ होकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करने वाले उपयुक्त राजाओं का इतिहास है। शॉर्ट एंड स्वीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रतिदिवसीय भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद पुराण उपनिषद और इतिहासों का सार है, श्रीमद् भागवत जिसका श्रवण करके हृदय के समस्त कलमशों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत जिनका श्रवण करके साक्षात भगवान को ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा दिव्य ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको प्रतिदिन प्राप्त हुआ है। ये हम सबका परम सौभाग्य है और श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा है, जिनके फल स्वरूप यह रसमयी दुर्लभ ग्रंथ हम सबको सुलभ हुआ है। श्रीमद् भागवत में अनेक स्कंध, अनेक अध्याय और अनेक श्लोक हैं। प्रस्तुत स्कंध का जो हम श्रवण कर रहे हैं, इस नवम स्कंद में सोमवंश और सूर्य वंश में जन्म लेने वाले राजा महाराजाओं की कथा है। श्री सुखदेव गोस्वामी सोमवंश और सूर्य वंश में जितने राजा हो गए उनका वर्णन कर रहे हैं, जितने राजा वर्तमान में हैं उनका भी वर्णन अब तक किए। इसके पूर्व श्लोक में यह वर्णन है कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र के धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, राजा पांडु का जन्म हुआ। हालांकि ये सब श्लोकों में प्रभुपाद जी ने परपोट नहीं दिया है, परंतु इसके पूर्व श्लोक में कुरुवंश का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म के विषय में बताए, राजा शांतनु के पुत्र के रूप में सत्यवती से भीष्म हुए, गंगा से भीष्म हुए और फिर सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य हुए। उसी परंपरा में बता रहे हैं कि किस प्रकार से चित्रांगद की मृत्यु हुई। चित्रांगद नाम का एक गंधर्व था और उस गंधर्व का नाम भी चित्रांगद था, और सोचा कि मेरा नाम चित्रांगद है और इस सत्यवती के पुत्र ने अपना नाम चित्रांगद रखा, तो उस चित्रांगद को चित्रांगद के साथ ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ और उस गंधर्व ने चित्रांगद का वध कर दिया। तब सत्यवती का एक पुत्र बचा जिसका नाम था विचित्र वीर्य। उस विचित्र वीर्य का विवाह कराने के लिए पितामह भीष्म तीन कन्या को लेकर आए, अंबा, अंबिका और अंबालिका। ये अंबा नाम की कन्या जो थी उनका मन किसी और पुरुष पर आया हुआ था, अतः पितामह भीष्म ने उसे छोड़ दिया। अंबिका और अंबालिका को लेकर आए और विचित्र वीर्य का विवाह कराया, परंतु बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब तक अंबिका और अंबालिका गर्भवती हो उनके पहले ही विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई। कुरुवंश की गादी हस्तिनापुर में बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया कि अब इस हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी और यहां कोई संतान नहीं बची। तब जब बहुत बड़ा प्रश्न हुआ उस समय सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास जी को बुलाया। वेद व्यास जी ने कहा था, मां जब मेरी जरूरत हो तब मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो वेद व्यास जी वहां पर आए, सत्यवती ने आदेश दिया कि आप अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करो। द्वापर युग तक देवरे पुत्रोत्पत्ति ये संभव था, परंतु प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कलो पंच विवर जयेत, कलयुग में यह विशेष रूप से वर्जित है। परंतु उस समय वेद व्यास जी को आदेश दिया गया आप अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करो। कथा आप सब जानते हैं, वेद व्यास जी अपने शरीर पर हल्दी और शुद्ध गाय का घी लगा कर आए और उस पर राख लगा दिए, और वेद व्यास जी के इस विकट रूप को जब अंबिका ने देखा तो अंबिका की आंखें बंद हो गई, और इसीलिए अंबिका से जो पुत्र हुआ जन्म से ही अंधा धृतराष्ट्र के रूप में। और अंबालिका ने जब वेद व्यास जी के विकट रूप को देखा तो वह पीली पड़ गई, इसलिए उनसे जो पुत्र हुआ वह पीले वर्ण का हुआ और जन्म से ही रोगी हुआ जिसका नाम था पांडव। जब ये दोनों अबनॉर्मल पुत्र हुए तब सत्यवती ने एक दासी को भेजा, और दासी हृदय से भगवान की भक्ता थी, इसलिए वेद व्यास जी की दृष्टि जब उन पर पड़ी तब उनके गर्भ से भगवान परम भक्त महाभागवत विदुर जी का जन्म हुआ। भक्तों ये कथा हम जानते हैं, लेकिन इस कथा के पीछे बहुत बड़ा सिद्धांत है। सिद्धांत ये है इस जगत में, क्योंकि ये पुत्र की परंपरा चली आ रही है पूरे अध्याय में, तो इस संसार में जब किसी पुत्र का जन्म होता है तो उस पुत्र के ऊपर 99.99% माता का ही स्वभाव उतरता है। मां का जो संस्कार होता है, मां का जो स्वभाव होता है, वही स्वभाव संस्कार पुत्र लेकर प्रकट होता है। पिता के पिता का ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर नहीं आता है। इसलिए आप शास्त्र की इस घटना को देखिए, पिता एक ही है, वेदव्यास जी पिता एक हैं, लेकिन एक पिता से एक पुत्र हुआ धृतराष्ट्र, उसी पिता का पुत्र हुआ पांडु और उसी पिता का पुत्र हुआ विदुर। एक ही पिता के पुत्र लेकिन तीनों पुत्र का भिन्न भिन्न स्वभाव। एक धृतराष्ट्र जो जन्म से आसक्त था राज्य में अपने पुत्र में, हालांकि पिता तो वेदव्यास जी थे, और एक विदुर जो जन्म से ही स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम, पिता एक ही है, धृतराष्ट्र और विदुर जी के पिता एक हैं, परंतु मां अलग अलग है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई संतान जन्म लेता है तो उनका पूर्ण रूप से आधार मां के ऊपर होता है। शास्त्र की और एक घटना देखिए, इसी के साथ साथ भूल गया मैं कौन सी घटना है, हाँ दीति और अदिति, दीति और अदिति पति एक है, कश्यप जी पति एक है, एक पत्नी से जितने बालकों का जन्म हुआ वह सब देवता हुए, और दूसरी पत्नी से जितने भी बालकों का जन्म हुआ वह सब असुर हुए। एक पिता है परंतु दोनों मां से जन्म लेने वाले संतानों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, एक देवता हुए एक असुर हुए बिल्कुल। तब तो इस भागवत की इन परंपरा से, इन कथाओं से अनेकों उपदेश अनेकों सिद्धांत प्राप्त होते हैं, और उनमें से एक सिद्धांत यह है कि संतान के ऊपर पूर्ण संस्कार मां का होता है। इसलिए जब कोई संतान बिगड़ती है तो सबसे बड़ा दोष मां को दिया जाता है, क्योंकि मां उस संतान को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, उस संतान के साथ 24 घंटा रहती है, पिता तो सुबह चला जाता है शाम को आता है। इसलिए बच्चे को संस्कार देने की जिम्मेदारी मां की है। आप हिरण्यकश्यपु को ही देख लीजिए, पिता असुर था लेकिन पुत्र महाभागवत उत्पन्न हो गया, क्यों? क्योंकि मां भक्त थी। अन्य गर्ग संहिता में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु भगवान की परम भक्त थी। उस पुराण में वर्णन है, जब हिरण्यकश्यपु को पता चला प्रहलाद विष्णु की भक्ति कर रहा है, मेरे दुश्मन की, मेरे शत्रु की भक्ति कर रहा है, तब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया। जब प्रहलाद नहीं मर रहे थे तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी पत्नी कयाधु को कहा, कयाधु अब तुम तुम्हारे बेटे को गोद में बिठाकर इस भोजन में विष डालकर मार डालो। हिरण्यकश्यपु हाथ में विष लेकर आया और अपनी पत्नी को देने लगा कि जाओ अपने बेटे को ये पिला दो। उस समय शास्त्र में वर्णन है, कयाधु ने बिल्कुल ना कह दिया और अपने पति को उपदेश दिया रोते हुए, बोले तुम अपने पुत्र को मारोगे? बोले वो मेरा पुत्र नहीं है, देत्य ये चंदन वने, ये देत्य असुर रूपी चंदन के वध में, चंदन के वन में ये बबूल उत्पन्न हो गया है। हिरण्यकश्यपु का कहना क्या कि हम असुरों का वंश चंदन जैसा है और ये प्रहलाद बबूल जैसा उत्पन्न हो गया, बिल्कुल विपरीत बोल रहा है। बोले देते ये चंदन वने, ये हमारे चंदन के वन में बबूल उग गया है, इस बबूल को काट देना ही बहुत बड़ा बहुत बड़ी बुद्धिमानी है, तुम उसे मार डालो। कयाधु ने कहा मैं नहीं मारूंगी। उन्होंने कहा पतिदेव चाहे मुझे मारना है, मेरा गला काटना है काट दो, लेकिन मैं मेरे बच्चे को नहीं मारूंगी। आपको 5 साल के बालक के ऊपर दया नहीं आ रही है? कि हिरण्याकश्यप को कोई दया नहीं थी। कहने का भाव यह है कि पिता एक, माँ अलग और बच्चों के स्वभाव अलग, इसलिए इससे यह निचोड़ यह सार निकलता है कि माँ का संस्कार, माँ का प्रभाव बच्चों के ऊपर पूर्ण रूप से रहता है। तो इसी परंपरा को गिनाते हुए आगे सुखदेव गोस्वामी पांडवों का जन्म कैसे हुआ, और ये भी कह रहे हैं कि परीक्षित तुम्हारा जन्म कैसे हुआ, तुम अपनी माँ के गर्भ से कैसे जन्म लिए, तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म कैसे हुआ। इस प्रकार से परंपरा गिनाते गिनाते भूतकाल की परंपरा को गिना दिया, वर्तमान काल की परंपरा को गिनाया। इस श्लोक में है सुखदेव गोस्वामी भविष्य की परंपरा को गिना रहे हैं। अब इस श्लोक में ज्यादा तो कुछ है नहीं, परंतु एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है अंतिम लाइन में, भाव्या। ये भाव्या शब्द जो है ये भविष्य काल का शब्द है। भाव्या माने भविष्य में होंगे। ये जो परंपरा है, सुनीत से सत्यजीत उत्पन्न हो गए, सत्यजीत से विश्वजीत उत्पन्न हो गए, विश्वजीत के रिपुंजय हो गए। ये जो परंपरा वर्तमान में नहीं है परीक्षित, ये सब राजा महाराजाओं का जन्म भाव्या भविष्य में होगा। तो भक्तों, इस भाव्या शब्द महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भविष्य में क्या होने वाला है उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है सुखदेव गोस्वामी भविष्य की बात को जान रहे हैं, और इसका अर्थ यह है कि संसार में जो कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति भविष्य दृष्टा हो जाता है, जो भविष्य को जानने लगता है। इसलिए अपना भविष्य दिखाने के लिए कोई तांत्रिक बापू और बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। भाव्या, अपने भविष्य को यदि जानना चाहो तो शुद्ध भक्त अपने शुद्ध गुरु के पास जाइए, शुद्ध गुरु अवश्य अपना भविष्य बताएंगे। और भक्तों, हमारी परंपरा में भी देखा गया, श्रील प्रभुपाद जी भविष्य को जानते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी ऐसी आगाही की जो भविष्य में हुई। एक समय की बात, श्रील प्रभुपाद जी विदेश में बैठे थे और मायापुर के प्रोजेक्ट के लिए चर्चा कर रहे थे। बोले मायापुर में भव्य मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उस समय कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे तो पुजारी कौन रहेगा उसमें पूजा करने के लिए। उसी समय ही दो जुड़वा भाई सूट बूट टाई सब पहनकर वहां पर आए। वहां पर श्री प्रभुपाद जी ने कहा मायापुर मंदिर के लिए ये दोनों भाई पूजा करेंगे, ये दोनों पुजारी बनेंगे। अभी तो बिजनेस कर रहे थे, अपना काम धंधा बिजनेस कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा ये दो है ना वहां पूजा करेंगे, और वही दोनों सूट बूट टाई वाले आज जननिवास प्रभु और क्या दूसरा नाम है पंकज आंगरी प्रभु, ये दोनों मायापुर में पुजारी के रूप में राधा माधव की पूजा कर रहे हैं, नरसिंह भगवान की। प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी, और भी प्रभुपाद जी ने बहुत भविष्यवाणी की। प्रभुपाद जी की नहीं, प्रभुपाद जी की जो शिष्य है जब वो भी शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं तब वे भी भविष्यवाणी करते। मैं आपको एक सत्य घटना कहूं, आज से लगभग 15-20 साल पहले है गुजरात में सूरत में एक रोग हुआ था। उस रोग का नाम था प्लेग, है ना, चूहे से हुआ था। एक दिन की बात, प्रभुपाद जी के एक शिष्य सन्यासी महाराज अमेरिका में थे और उनकी एक शिष्या सूरत के किसी स्कूल में नौकरी करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। तो एक दिन अचानक उस गुरु महाराज का फोन आया उनकी शिष्या को स्कूल में, और फोन उठाया, बोले गुरु महाराज आपने स्कूल में फोन किया? बोले अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरा आदेश है तुम आज और अभी ही वृंदावन चली जाओ। इतना कहे कि गुरु महाराज ने फोन रख दिया। और ये सोचने लगी कि वृंदावन जाना है तो अभी आज क्यों, मैं मेरी स्कूल को छोड़कर कैसे जा सकती हूं। उन्होंने ट्रेन की टिकट, रेलवे, ये सब चेक किया, फिर से फोन किया गुरु महाराज को, गुरु महाराज टिकट नहीं मिल रही, मैं कल परसों या एक वीक के बाद जाऊंगी तो चलेगा? बोले नहीं, टिकट नहीं मिल रही तो वेटिंग में बैठकर चली जाओ। वेटिंग टिकट लेकर चली जाओ, लेकिन आज अभी वृंदावन चली जाओ। तो गुरु महाराज की आज्ञा का शिरोधार्य करके वह महिला, वह भक्त सूरत से चली गई वृंदावन। और भक्तों आश्चर्यमयी बात, जैसे ही वह वृंदावन गई, दूसरे दिन उसी स्कूल से प्लेग नामक रोग उत्पन्न हुआ। उसी स्कूल से अनेकों बच्चे मर गए और उसी स्कूल से ये रोग फैला और पूरे सूरत और गुजरात में चला गया। तब उस शिष्य को पता चला, मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऐसी आज्ञा, ऐसा आदेश क्यों दिया। तो इस प्रकार से जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वो भविष्य दृष्टा हो जाते हैं, भविष्य को जान लगते हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने हाथों को ज्यादा किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, है ना। लोग अपने हाथ की रेखा दिखाते हैं, पंडित जी जरा मेरी रेखा देख लीजिए क्या भविष्य में है। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी हाथों की रेखा जो है बिल्कुल बेकार है ये जो है, क्योंकि अच्छा भविष्य होता, अच्छा कर्म होता तो हम लोग यहाँ न होते, वैकुंठ में होते। कुछ बुरा करके आए हैं, कुछ पाप करके आए, कुछ गलत करके आए, इसलिए तो फंसे। और कुछ लोग अपनी हाथों की रेखा को, भविष्य को बदलना चाहते हैं। तांत्रिक बापू बाबा के पास जाते हैं और वो लोग इतने ठगते रहते हैं, बोले इतना जाप करा दो, इतना डोनेशन दे दो, ये कर दो, आपका सारा काम बन जाएगा। यदि उनके जाप करने से हमारा काम बन जाता तो वो अपना काम ना बन लेते, वो लोग करोड़पति ना बन जाते। वो खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, खुद कस्टमर को ढूंढ रहे हैं। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाथों की रेखा दिखाने की जरूरत नहीं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए ताली बजाइए, हाथों की रेखा अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि इस हाथों की रेखा को कोई नहीं बदल सकता। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ये कर्म का सिद्धांत इतना पक्का है, इतना ठोस है, कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है, एक चींटी से लेकर इंद्र तक सबको अपने अपने कर्म की सजा भुगतनी पड़ती है। सब लोग अपने अपने कर्म की सजा भोगत रहे हैं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कर्म कृत भोग सब भ्राता। इस संसार में सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करने लगता है, कहते कर्माणि निर्दहति, हजारों जन्म के कितने भी बुरे कर्म हो, हजारों हजारों जन्म से हम पाप करते आए हो, परंतु यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करने लगता है तो कृष्ण की भक्ति उस अग्नि की तरह है जिस अग्नि में करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, भक्ति से ही हम हमारे कर्म को काट सकते हैं। अतः इस संसार के किसी कर्म कांड में या किसी बापू बाबा के चक्कर में फंसने से अच्छा है भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करें, कृष्ण का नाम सुने और कृष्ण की कथा सुने। और उसमें भी आज तो कुछ लोग ज्यादा ना चाहते हैं ना, अपने कर्म को बदलना चाहते हैं। कर्म में लिखा है कि आप 40-50 साल में बूढ़े हो जाओगे, तो लोग बूढ़े बनना नहीं चाहते। हम अभी थाईलैंड गए थे, वहां पर एक नई चीज चली। नई चीज क्या है, वहां पर बहुत बड़ा क्रेज है लड़की बनने का। हम तो आश्चर्यचकित हो गए। हम वहां पर मॉल में गए तो मॉल में कुछ दुकानदार से बात किए, माता जी खड़ी थी, माता जी से बात किए, फिर वहां के जो लोग थे कहने लगे प्रभु जी आप कुछ देखे, बोले नहीं, बोले आप जिससे बात कर रहे थे ना वो लड़का है, बोला हो ही नहीं सकता, बिल्कुल लड़की, हूबहू लड़की, उसके बाल देखो, उनका रूप देखो, उनके कपड़े सब, नाम है, बोला हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं प्रभु जी ये लड़की है। फिर सब जगह पर सब लड़की थी, लेकिन थे वो कैसे कह रहे थे कि लड़का। मैंने विश्वास नहीं किया, तब वो मुझे बहुत बड़ी हॉस्पिटल में लेकर गए, बहुत बड़ी वहां पर थाईलैंड फुकेट में हॉस्पिटल है, बोले ये वो हॉस्पिटल है यहां पर लड़कों को लड़की बनाया जाता है। पूरा हमने देखा हूबहू, और 60 साल के बूढ़े को या बूढ़ी को 20 साल की लड़की बनाया जाता है, ये भी हमने देखा कायाकल्प सर्जरी से। फिर तो हम समझ गए कि ये क्या है। एक बार टुक टुक से जा रहे थे, वहां रिक्शा को रिक्शा नहीं कहते हैं, टुक टुक कहते हैं, तो टुक टुक से जा रहे थे, उसको चलाने वाली भी लड़की। तो लड़की लड़के में थोड़ा अंतर होता है ना, यहाँ ये जो होता है लड़के को बाहर होता है, लड़कियों को नहीं होता है। तो हमने पूछा उनको, आपको ये कैसे है, ये क्यों? बोले 7.5 लाख रुपया बोल रहे थे, मेरे पास 6 लाख ही था, इसलिए और सब बदल गया, लेकिन 1.5 लाख के कारण ये नहीं बदला। तो इस प्रकार लोग अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने कर्म को बदलना चाहते हैं। अभी हम इंटरनेट पे, आप गूगल में कुछ सर्च करो तो तुरंत एक नई एड आ रही है, एक नई चीज मार्केट में आई है। आपकी उम्र 60 साल की है, बस आप हमारे पास आइए और कितना कुछ कुछ 8-10 हजार रुपये में आपको 20 साल का बना दिया जाएगा। तो सबको सबको जवान बनना है, अपने कर्म को बदलना है। परंतु भक्तों, बाहर से कितने भी चमड़े को डिजाइन किया जाए, अंदर से व्यक्ति की उम्र तो उतनी रहती है। लेकिन शास्त्र का एक सिद्धांत है, यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, इस भागवत को सुनता है, तो वास्तव में वह व्यक्ति जवान ही रहता है, वह व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। और यदि मृत्यु से भी बचना चाहते हैं, अपने जीवन को लंबा करना चाहते हैं, तब भी ये भागवत उत्तम। क्योंकि भागवत में एक प्रसंग है कि जब 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में आए और 17 स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत, 1,000 वर्ष के लिए यज्ञ करने का अनुष्ठान ले लिए। यज्ञ कहते उसी समय सुत गोस्वामी आए और यज्ञ बंद कर दिया और सुत गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनने की जिज्ञासा करने लगे। बोले तत्र तत्र अंजसा आयुष्मन, हे आयुष्मन, हे धीमन, हे सुत गोस्वामी, कृपया करके आप हमें भागवत कथा सुनाइए। तो बहुत बहुत जिज्ञासा की। मानो तब सुत गोस्वामी ने कहा, आप कितना भागवत सुनना चाहते हो? 45 मिनट, 1 घंटा, 3 घंटा, 7 दिन, 10 दिन? बोले सुध गोस्वामी, हम 1,000 वर्ष तक भागवत सुनना चाहते हैं। सुध गोस्वामी ने कहा, 1,000 वर्ष तक भागवत सुनना चाहते हो? तुम जानते नहीं, द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग प्रारंभ हो गया। कलयुग में लोगों की आयु 100 साल की होती है। मैं तो 1,000 वर्ष तक सुनाऊंगा, लेकिन तुम लोग 100 साल टपक जाओगे। इसलिए ये तुम्हारा मनोरथ दुर्लभ है, 1,000 वर्ष तक तुम कैसे सुन सकते हो? तब ये 88,000 ऋषि मुनि बोले, सुध गोस्वामी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? बोले, इस संसार में मारने वाले साक्षात जो काल है, यमराज है, उस यमराज को ही हमने कथा में बिठा दिया है। देखो, हमारी बाजू में बैठे हैं। तो जब तक आप भागवत कथा सुनाओगे, तब तक यमराज के दरबार में ताला होगा। उसी सिद्धांत के अनुसार इस संसार में जो लोग भगवत कथा सुनते हैं, जब तक भागवत सुनते हैं, तब तक उनकी उम्र गिनती में नहीं आती है, काल उनकी उम्र को काटता नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति भागवत सुनता है। आयु हरति वे पुंसाम, हमारी आयु हरने वाला काल है, लेकिन वो काल हमारी आयु को नहीं हरता है। कब तक? जब तक हम भागवत सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए यदि उम्र लंबी करना चाहते हैं, ज्यादा जीना चाहते हैं, तो भागवत सुनना चाहिए। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, आप बताइए, कयाधु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे और हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए। हिरण्यकश्यपु तपस्या करके 36,500 वर्ष के बाद वापस लौटे और उस समय प्रहलाद महाराज अपनी मां के गर्भ में ही थे। तो 36,500 वर्ष तक प्रहलाद अपनी मां के गर्भ में रहे, ये सत्य बात है। तो हाउ टू पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? माँ 9 महीने तक अपने बालक को गर्भ में रखती हैं, 10 महीने तक, और फिर माँ को तो प्रसव वेदना होने लगती है। एक प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न ये है कि जब प्रहलाद का जन्म हुआ है ना, सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, 12 वर्ष तक कृतिका के गर्भ में रहे, तो जब जन्म लिए तो 12 वर्ष के ही बनकर जन्म लिए, फिर दौड़ने लगे, तो प्रहलाद महाराज 36,500 वर्ष तक गर्भ में रहे, तो जब माँ के गर्भ से बाहर निकले तो 36,500 वर्ष के लंबे चौड़े होने चाहिए, लेकिन ये तो छोटे से बालक थे। तो अब यहां पर एक प्रश्न ये हो रहा है, 36,500 वर्ष तक गर्भ में रहने के बाद, पहले तो ये इतने वर्ष तक गर्भ में कैसे रह पाए, इसका कारण क्या है? इसका कारण है नारद मुनि का वरदान, नारद मुनि की कृपा। कयाधु ने नारद मुनि से मांगा था, नारद जी जब तक मेरे पति वापस न आए तब तक मैं मेरे बालक को गर्भ में संभाल कर रखूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। नारद जी ने तथास्तु कहा। तो वहां पर भी एक सिद्धांत मिला, ऋषि मुनियों की कृपा से, महत सेवा से, महात्माओं के आशीर्वाद से गर्भवती महिला को प्रसव वेदना नहीं होती है। और दूसरा ये है, प्रहलाद महाराज 36,500 वर्ष के हुए फिर भी वो बच्चे के बच्चे ही बने रहे, क्यों? क्योंकि उतने वर्ष तक नारद मुनि ने लगातार कयाधु और प्रहलाद महाराज को भागवत कथा सुनाई, निरंतर नारद मुनि दोनों को भागवत सुना रहे थे, और भागवत सुनने के कारण उनकी आयु कटी नहीं, वे वैसे के वैसे ही बने रहे हैं। तो भक्तों, हम हमारे भविष्य को बदलना चाहते हैं, कर्म को काटना चाहते हैं, तो ये भागवत कथांतर सुनते रहनी चाहिए। यहां पर भाग या भविष्य, भक्तों सोम वंश की कथा का वर्णन है, इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और क्योंकि भाव या भविष्य की बात आई, इसलिए आइए हम भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी लीला का श्रवण करेंगे, क्योंकि आज के श्लोक में केवल परंपरा का वर्णन है और प्रभुपाद जी ने मात्र 2 लाइन में ही अपना परपोट लिखा है, इसलिए हम ज्यादा इसके विषय में तो नहीं कह सकते, परंतु भाव्या शब्द महत्वपूर्ण है, भविष्य दृष्टा। भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो भविष्य दृष्टा थे, और वह यदुओं के पुरोहित थे, और भविष्य दृष्टा पुरोहित होने के कारण वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के पास भेजा। आइए भगवान श्री कृष्ण के नामकरण की कथा यथा समय यथा पात्र हम श्रवण करें, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने भागवत के 7वें अध्याय तक, 10वें स्कंद के 7वें अध्याय तक कृष्ण की अनेकों लीला का वर्णन किया, लेकिन अब तक नाम नहीं लिया। बालह, बालक, बालक 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 ऐसे संबोधन देते रहे, या कभी हरि संबोधन देते रहे, कभी भगवान संबोधन दिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी की भी इच्छा हुई कि अब कृष्ण का नाम पर होना चाहिए, और हमारी भी इच्छा है कि आज तो लोग अपने कुत्तों के भी नाम रख देते हैं, हैं? हैं? टॉमी, चिंटू, मिंटू, पिंटू, हैं? और जैसे ही कुत्ते का नाम लेते तुरंत दौड़ कर आ जाते हैं। ब्रह्म का, भगवान का भी नामकरण होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण कैसे हुआ? वैसे तो भगवान नित्य है, भगवान के नाम भी नित्य हैं, परंतु जैसे भगवान नित्य है फिर भी युग युग में समय समय पर भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, वैसे ही भगवान के नाम नित्य हैं, लेकिन समय समय पर भगवान के नाम प्रकट होते हैं। तो किस प्रकार द्वापर युग में हमारे सामने जो खड़े हैं गिरधारी जी, इनका नामकरण कैसे हुआ है? इनको भी ब्रज में सब लोग बच्चा मानते थे, ये हमारा लाला है, बालक है, सब लोग वात्सल्य भाव में इतने डूबे रहते थे, इतना सराबोर होते रहते थे कि कृष्ण कितनी भी लीला करे, कितना भी पराक्रम दिखाए, फिर भी ब्रजवासी यही मानते थे कि ये तो हमारा लाला है, ये तो हमारा लड़का है, ये भगवान नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दृष्टांत देते हैं, ब्रजवासियों का प्रेम जमे हुए घी के समान है। ठंडी की मौसम चल रही है ना, आपके घर पे घी जम जाता होगा, है ना। ब्रजवासियों का प्रेम जमे हुए घी के समान है, और मथुरा के और द्वापर के परिकरों का प्रेम गरम घी की तरह है। दोनों घी घी है, दोनों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम जमे हुए घी की तरह। जमे हुए घी में यदि आप एक रुपये का सिक्का डाल दो, घर पे जाकर ये काम कीजिएगा, जमे हुए घी में आप एक रुपये का सिक्का डाल दो, आपको वो सिक्का नहीं दिखेगा, या सोने का सिक्का डाल दो, नहीं दिखेगा। और वही सोने का सिक्का गरम किए हुए घी में डाल दो, आपको तुरंत दिखाई देगा। दोनों घी है, दोनों एक ही घी है, दोनों की वैल्यू एक, वजन एक, सब समान है, लेकिन जमे हुए घी में वह सिक्का नहीं दिखेगा और गरम घी में सिक्का दिखेगा। बस उसी प्रकार ब्रजवासियों का प्रेम भी प्रेमी है, वही वह भी घी है, और मथुरा और द्वारका वासियों का भी प्रेम प्रेमी है, वही शुद्ध घी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। बंसी कृष्ण जो कुछ पराक्रम करते हैं तो मथुरा और द्वारका के परिकर जो है वो कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव उदित हो जाता है, और ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम जब कितना भी पराक्रम दिखाए, कुछ भी करे, पूतना को मारे, अगासुर बकासुर त्रिणावर्त यहां तक गोवर्धन को भी धारण कर ले, फिर भी जमे हुए घी में जैसे वह सिक्का नहीं दिखता है, वैसे जमे हुए वात्सल्य भाव में कृष्ण का ऐश्वर्य इनको नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। ज्यादा से ज्यादा क्या मानते थे, इनके ऊपर देवताओं की कृपा है, देवी देवताओं की तो ये रक्षा कर रहा है, लेकिन वो लोग नहीं जानते। और ज्यादा ज्यादा सोचते थे, ब्रजवासियों की बुद्धि और जब ज्यादा चलती थी, विष्णु की इन पर बहुत कृपा है, अरे इनके नेत्र के इशारे से तीन विष्णु प्रकट होते हैं, संसार का सर्जन पालन प्रलय करते हैं, यही सर्वेश्वर तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर प्रभु ब्रजेंद्र कुमार, यही ब्रजेंद्र कुमार सर्वेश्वर है, नहीं जानते। क्यों? क्योंकि गाढ़ प्रगाढ़ प्रेम है, वात्सल्य भाव। तो इस प्रकार, और इसके दृष्टांत भी आपको आपके सामने है। आप देखिए ब्रज में कितनी भी लीला भगवान ने की, लेकिन फिर भी लोग वात्सल्य भाव में ही रहते थे। पूतना के ऊपर भगवान पूतना को मारकर 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना के ऊपर सोए थे, तो तुरंत कृष्ण को उतारे और यशोदा मैया अपने स्तन का पान कराने लगे, और ब्राह्मणों को बुलाए, स्वस्ति वाचन कराए, साधारण बालक मानते थे क्योंकि वात्सल्य भाव था। और यहां पर मथुरा के परिकर और द्वारिका के परिकर कृष्ण को अपना सखा मानते थे, अर्जुन है ना, कृष्ण के साथ रहते थे, कृष्ण के कंधे के ऊपर हाथ रखकर चलते थे, सखा मानते थे, लेकिन कृष्ण जब अपना ऐश्वर्य दिखाने लगे, भगवद गीता में वर्णन है ना, जब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तब अर्जुन तो पानी पानी हो गया है। यशोदा को भी कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया है ना, छड़ी लेकर गई थी, कृष्ण ने माटी खाई थी, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। जब बलदेव जी ने शिकायत की, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई है, यशोदा हाथ में छड़ी लेकर दौड़कर कृष्ण के पास गई, कृष्ण को कहा, कृष्ण तूने माटी खाई। सुखदेव गोस्वामी भगवत में कहते हैं, ना हम भक्षितवान अम्बे, हे अम्ब हे मां, अहम न भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई है। अब बताओ, पूरी दुनिया जानती है इसने माटी खाई, पूरा संसार जानता है इसने माटी खाई, और ये क्या कह रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई। तो यशोदा कहने लगी, तो क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं। बोले, मां सर्वे मिथ्या भी संचिन, सब लोग झूठे। तो मां कहने लगी, ये सब झूठे और तू ही हरिश्चंद्र का पुत्र बनकर सत्यवादी बनकर आया है। ठीक है, ये सब बच्चे झूठ बोल सकते हैं, ये तेरा बड़ा भाई दाऊ थोड़ी झूठ बोल सकता है। बोले, ये दाऊ ये कहने को बड़ा है, ये तो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, सबसे ज्यादा बड़ा भाई तो ध्यान रखता है, सेवा करता है, ये बड़ा भाई जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, माँ क्या बताऊं, माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे हैं। क्या इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे, बोले माँ ये मुझे बोलता है कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, ये दाऊ मुझे रोज चिढ़ाता है, मेरी खिल्ली उड़ाता है। क्या बोले तेरे पिता गोरे तेरी माँ भी गोरी, नंद गोरे यशोदा गोरी, तू कहां से काला कलूटा आ गया है? तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं, तुझे तो नंद और यशोदा खरीद कर लाए है। कृष्ण अपनी माँ को कहते थे, माँ ये दाऊ मुझे कहता है कि मैं तेरा पुत्र नहीं, क्या तुम मुझे खरीद कर लाए हो? इतना सुनकर तो यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोले कौन ऐसा कह रहा है, सपने में भी ऐसा मत सोचना, तुम हमारा ही पुत्र है। तो इस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, लेकिन ये तो आई थी है? ये बलदेव जी कहने लगते थे, माँ इसकी बात में मत आना, तुम जिस काम के लिए आए हो पहले वो खत्म करो। यशोदा को याद आया, हाँ बोलो, माटी खाई? बोले नहीं खाया। यदि सत्य गिरह तर ही, माँ तुझे यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो व्या दे ही, मेरे मुंह में देख ले। तो यशोदा ने कहा दिखाओ अपना मुख, कृष्ण ने अपना मुख खोला। आप जानते ही हैं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन कराया, उसमें करोड़ों करोड़ों जीव, उसमें से एक एशिया खंड और उसमें भारत, भारत में मथुरा ब्रज वृंदावन और उसमें यशोदा और कृष्ण का दर्शन। जो यशोदा हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को मारने के लिए आई थी, वही यशोदा मूर्छित होकर गिर गई, दंड देने वाला खुद ही दंडित हो गया। परंतु एक प्रश्न तो दुनिया के लिए बन गया कि जहां भागवत के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमही, परम सत्य कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण। जहां समस्त देवतागण गर्भस्थ स्तुति करते हुए कहते हैं सत्यम व्रतम परम त्रिसत्यम, एक श्लोक में 9 बार कृष्ण को सत्य 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 कहते हैं। वेद शास्त्र ये समस्त शिव जी बड़े बड़े संत साधु भगवान को सत्य कहते हैं, तो आज ये भगवान झूठ क्यों बोल रहे हैं? कुछ लोग ऐसा दोष दे सकते हैं कि कृष्ण ने झूठ क्यों बोला, परंतु भक्तों कृष्ण आज तक कभी झूठ नहीं बोले, यदि हम इस बात को समझ सकते हैं तो। आज तक कृष्ण झूठ नहीं बोले, क्यों? क्योंकि यशोदा ने पूछा कृष्ण माटी खाई, तब कृष्ण उत्तर देना क्या चाहते थे, मैया मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई, मैंने माटी खाई इसलिए तुम मुझे मारने आ रही है, मैया मैंने अकेले ने नहीं खाई, जिसने शिकायत की दाऊ ने भी माटी खाई, ये सब लड़कों ने भी माटी खाई, मैया लड़कों ने नहीं तूने भी माटी खाई, और तूने नहीं इस करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों ने माटी खाई, तुझे विश्वास नहीं तो देख ले मेरे मुंह में, सबने माटी खाई, अब तू किसको दाटेगी और किसको दंड दोगी? तो कृष्ण ने के कहने का भाव मैया मैंने माटी नहीं खाई इसका भाव क्या है, मैया मैंने अकेले ने माटी नहीं खाई, हम सब लोगों ने करोड़ों ब्रह्मांड में वाले समस्त जीवों ने माटी खाई, सबने माटी खाई, ये है कृष्ण के कहने का भाव। तो इस प्रकार यशोदा को जब ऐश्वर्य दिखाया तो यशोदा को यही लगा कि ये मेरा बेटा है, कभी कभी सोचती थी किसी भूत प्रेत का साया है तो कभी विष्णु की कृपा है, परंतु वहां जब भगवान के ऐश्वर्य को देखते थे मथुरा के परिकर द्वारिका के परिकर, अर्जुन साक्ष्य भाव में, साक्ष्य भक्ति के आचार्य अर्जुन है, कृष्ण के साथ साक्ष्य भाव में रहते थे और उनके साथ खाना पीना चलना घूमना, लेकिन कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन पानी पानी हो गया, पसीना निकल गया, भगवद गीता में वर्णन, दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में बैठ गया और प्रार्थना याचना करने लगे, अर्जुन कृष्ण आज तक मैंने आपको मेरा सखा माना, सखे तिमत्वा प्रसभम संयुक्तम हे कृष्ण हे या दव है सखेती, सखेती यतवा यदमत प्रणीतम, मैंने सखा माना और मैंने आपको संबोधन दिया, ए कृष्ण इधर आ, ए सखा इधर आ, मैंने आपको तुकार करके बुलाया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आज मुझे पता चला कृष्ण आप तो परम परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान है। दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन अंत में कहने लगे, जैसे एक पत्नी की गलती को पति तुरंत क्षमा कर देता है, एक पुत्र की गति को पिता क्षमा कर देता है, वैसे ही है प्रभु आप मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो ये है भगवान के दोनों प्रकार के भक्त। ब्रज में भगवान के जो भक्त थे बिल्कुल वात्सल्य भाव में रहते थे। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में नंद बाबा के वहां रहते हैं और उस समय वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को बुलाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा, कृष्ण के नामकरण करने वाले इस महान ऋषि का परिचय एक श्लोक में बताते हुए कहते हैं, उनका नाम है गर्ग, गर्ग मुनि, जिसे हम गर्गाचार्य कहते हैं, और ये भगवान श्री कृष्ण की लीला को बहुत निकट से देखे हैं, कृष्ण लीला को बहुत करीब से देखे हैं, इसलिए इन्होंने एक बहुत सुंदर शास्त्र लिखा जिसे गर्ग संहिता कहा जाता है और उसमें कृष्ण लीला का वर्णन हुआ है। तो गर्ग पुरोहितो, गर्गाचार्य जो थे वो पुरोहित थे, किसके? बोले यदुनाम, गर्गो यदुनाम पुरोहित, गर्गाचार्य यदुओं के पुरोहित थे, कुल पुरोहित। यहां पर भी पुरोहित बैठे हैं हमारे भक्ति विजय प्रभु, ये लोग भी पुरोहित हैं। परंतु पुरोहित का अर्थ क्या होता है? सिद्धार्थ कहते हैं, पुरोहित माने पूरम हित करोति इति पुरोहित, जो पूर का हित करे उसे पुरोहित कहा जाता है। पूर का अर्थ समाज भी होता है, पूर का अर्थ राज्य भी होता है, पूर का अर्थ देश भी होता है, और पूर का अर्थ ये पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड भी होता है। जो इस जगत की रक्षा करे, जो अपने कुल की अपने समाज की रक्षा करे, जो अपने कुल का हित करे, उसे पुरोहित कहा जाता है। पहले के राजा महाराजा अपना हित करने के लिए अपने साथ पुरोहित को रखते थे, और प्रायः ये पुरोहित ब्राह्मण हुआ करते थे, क्योंकि संसार में ब्राह्मणों की बुद्धि से यदि काम न लिया जाए तब तक क्षत्रियों का, वैश्य का और शूद्र का कभी भी हित नहीं हो सकता है। क्षत्रियों की भुजाओं में बल हो सकता है और वैश्य की ही वैश्य में बहुत सारी टेक्निक और ये सब व्यापार कर सकते हैं और शूद्र सेवा कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों वर्णों को ब्राह्मण की सहायता लेनी चाहिए। यदि पुरोहित ब्राह्मण की सहायता न ले तो उनका हित कभी नहीं हो सकता है, इसलिए पहले के राजा महाराजा ब्राह्मण को रखते थे। तो गर्ग पुरोहितो राजन, हे परीक्षित, गर्गाचार्य यदुओं के पुरोहित थे, और कैसे थे उनका परिचय? बोले सुमहातपा, यदुनाम सुमहातपा। ये गर्गाचार्य बहुत बड़े तपस्वी थे। भक्तों, तपस्या से तेज बढ़ता है, चाहे भक्ति हो या कोई भी मार्ग हो, भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या अत्यंत आवश्यक है। और भगवान शिवदेव ने प्रारंभ में ही यह सिद्धांत दे दिया, तपो दिव्यम पुत्रकाये न सत्वम, दिव्य तपस्या कीजिए। तो तपस्या से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए थे, और ऐसे गर्गाचार्य को एक दिन वसुदेव प्रचोदित, वसुदेव जी ने आज्ञा दी, निवेदन किया कि वहां पर नंद बाबा के घर पर मेरा पुत्र है, अब आपसे क्या छिपाना, आप तो सब कुछ जानते ही हो। देखिए, ये परम गुह्य बात थी कि वसुदेव जी अपने बालक को गोकुल में नंद बाबा के वहां छोड़कर आए थे, परम गुह्य बात। लेकिन ये परम गुह्य बात होकर भी वसुदेव ने गर्गाचार्य को बता दिया। यहां पर भी एक सिद्धांत आया, इस संसार में हमारे जीवन जितनी भी गुई बातें हैं ये सारी बात हमें हमारे गुरु को बता देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा विद्वानों का कहना है यदि डॉक्टर के पास झूठ बोलोगे तो कभी भी रोग से मुक्त नहीं हो पाओगे, वकील के पास यदि झूठ बोलोगे तो उस केस को कभी सोल्व नहीं कर पाओगे, और गुरु के पास यदि कुछ छिपाओगे तो कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए ये गुह्य से गुह्य बात भी अपने गुरु को बता दी, मैंने एक गलत काम किया है, झूठ बोला है गुरु जी, और झूठ बोलकर पुत्र का जन्म हुआ था, गोकुल छोड़कर आया हूं और कन्या को लेकर आया हूं, गुरु को सारी बात बता दी। और गुरु को जब हम सारी बात बता देते हैं, हमारे द्वारा किए गए पाप को इजहार गुरु के सामने कर देते हैं, तो गुरु हमारे सारे पाप को लेते हैं। तो जब कोई शिष्य गुरु को अपना काम अपना पाप बताता है तो क्या कर रहा है, अपने जीवन में जो पाप है उसको डिलीट कर रहा है और गुरु को दे रहा है। तो प्रश्न हो सकता है, तो गुरु को सब पाप लग जाएगा? गुरु की भक्ति साधना इतनी स्ट्रांग होती है, उनकी भक्ति की आग इतनी तीव्र होती है कि अपने शिष्य के पाप को जलाकर भस्म कर देते हैं। ये तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को सारी बात बताई और कहा ब्रजम जगाम नंदस्य, हे गर्गाचार्य जी आप ब्रज में जाइए, गोकुल में जाइए और नंद बाबा के वहां जाकर मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। मेरे दोनों पुत्र, रोहिणी से जिसका जन्म हुआ वो भी वहीं पर है और देवकी से जिसका जन्म हुआ वो भी वहीं पर है, और ये ग्वाले तो कब नामकरण करेंगे इसका कोई भरोसा ठिकाना नहीं है, इसलिए आप जाओ और नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने कहा होगा कि मैं कैसे जाऊं, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है वहां जाना, लेकिन वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए होंगे, बस गुरु जी आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस इतना मांग रहा हूं मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। जब शिष्य ने बहुत बहुत जिज्ञासा की तब जाकर गुरु जी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और रिस्क ले लिया, क्योंकि कंस के अनुचर ताक में बैठे थे, नंद बाबा को मिलने के लिए कौन आ रहा है, वसुदेव के वहां से कौन ब्रज में जा रहा है, लेकिन फिर भी गर्गाचार्य गए। आइए, गर्गाचार्य मथुरा से गोकुल गए और गोकुल में नंद बाबा के घर का बेल बजाए, बजर बजाए, और नंद बाबा ने अपना दरवाजा खोला और नंद बाबा ने अपने घर पे आए हुए अतिथि गर्गाचार्य को देखकर क्या किया, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। गर्गाचार्य द्वार पर खड़े हैं, आज तो जमाना ही बदल गया है, द्वार पर पहुंचने ही नहीं देते हैं, सिक्योरिटी को कह के रखते हैं किसी को ऊपर आने मत देना, और यदि आए तो बोल देना घर से बाहर गए हैं, और इतने दूर से आए हैं, पसीने से लथपथ है, इंटरकॉम से फोन करते हैं आऊं, बोले नहीं अभी हम सो रहे हैं, और उसमें भी यदि घर के दरवाजे पर पहुंच जाए तो हम लोग इतने बुद्धिमान दो दो दरवाजे बनाते हैं, एक तो मेन दरवाजा होता है और एक जाली होती है, मेन दरवाजा खोलते हैं और जाली से पूछते हैं कौन हो, कहां से आए, क्यों आए, आपका नाम क्या, पिता का नाम क्या, उनके पिता का नाम क्या, क्या लेना देना है, कितने समय तक आए, अरे बेचारे घर तो आने दो, बाहर खड़े खड़े ही पसीना निकाल देते हैं, लेकिन घर पर आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे करना है नंद बाबा सिखा रहे हैं। भगवान के पिता, ध्यान रहे, कभी कभी हम लोग कहते हैं हम तो भक्त है ना, अब हमको दूसरों का स्वागत करने की क्या जरूरत रही, साक्षात भगवान कृष्ण के पिता जब इतना अच्छा स्वागत कर रहे हैं तो हमारी गिनती तो कहां है। तो कहते हैं तम दृष्ट्वा परम प्रीत प्रति उत्ताय कृतांजलि, उन गर्गाचार्य को अपने घर पर अतिथि को आते देखकर सर्वप्रथम क्या किया, प्रति उत्ताय वसुदेव जी नंद बाबा अपने स्थान से खड़े हो गए, कृतांजलि दोनों हाथ जोड़े और दौड़कर द्वार के पास गए और गर्गाचार्य का स्वागत किए, और स्वागत करके आनर्चा अदोक्षज दिया प्राणी पूत पुरः सरम, सर्वप्रथम उनको पुरः सरम अपने अंतःपुर में अंदर लेकर गए, बहुत सुंदर आसन दिया, बिठाया और पानी का ग्लास दिया, जल पिलाया। और जल पिलाने के साथ साथ कहते हैं कि बहुत सुंदर वाणी से उनका स्वागत किया। भक्तों, हमारे घर पर आए हुए अतिथि को ड्राई फ्रूट मिल्क शेक न पिला सके तो कोई बात नहीं, कम से कम पानी तो पिला सकते हैं, एक आसन देना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि पानी में भी आजकल तो थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है, थोड़ी बहुत मेहनत लग जाती है। इतना भी न करो तो कोई बात नहीं, दो शब्द मीठे प्रेम से बोल तो सकते हैं कि अच्छा हुआ आप आ गए, हम तो आप ही की राह देख रहे थे, इतने दिनों से आपने हमको तड़पाया, सुस्वागतम, आप आइए बैठिए। कितना अच्छा लगेगा उस अतिथि को। पहले के तो लोग तो लिखते थे भले पधारिया, है ना, गुजराती में, इंग्लिश में लिखते थे सुस्वागतम, वेलकम, लाभ, शुभ, शुभ लाभ, ये सब लिखते थे। और आज कुत्तों से सावधान, क्योंकि अंदर सब कुत्ते ही भरे पड़े हैं। बिवेयर ऑफ द डॉग, और दरवाजा खुलता है तो कुत्ता ही दौड़ कर आता है, अतिथि को तो पहले बहुत भगाता है। सुस्वागत, देखिए वाणी इतनी मीठी होनी चाहिए, अद्भुत बात है भक्तों। शास्त्र में यहां तक कहा गया अतिथि का स्वागत वैसे करें कि यदि दुश्मन भी हमारे घर पर आया हो, हमारे स्वागत से वह दुश्मन भी हमारा प्रेमी बन जाए, ऐसे स्वागत करना चाहिए अतिथि का स्वागत। भागवत के पंचम स्कंद में अंत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी, उनमें से एक नरक कहते हैं कि अतिथि को देखकर जो स्वागत नहीं करता, ये दूर की बात है, अतिथि को देखकर जो प्रसन्न नहीं होता उसके लिए भी नरक तैयार है। अतिथि को देखकर आंख खोलते हैं, ये साला आ गया है समय बिगाड़ने के लिए, इसको अभी आना था दोपहर के टाइम में सोते समय। अतिथि को देखकर जो प्रसन्न नहीं होते, मन में क्रोध करते हैं, बाहर से तो भले कुछ व्यवहार कर लेकिन अंदर से जो प्रसन्न नहीं होते हैं, उनको भी मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। हम जब बहुत सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि इस नरक में स्त्रियों का प्रमाण ज्यादा होगा। नहीं, हम सोचते हैं, ये सोचना है मात्र। खैर, तो यहां पर लिखा है कि कैसे स्वागत किया। अब कृष्ण का नामकरण तो नहीं होगा आज, लेकिन अतिथि का स्वागत कैसे होगा ये समझना उचित। बोले नंद बाबा ने गर्गाचार्य का अतिथि का स्वागत कैसे हुआ, एक शब्द में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनर्च अधोक्षज दिया। अनर्च माने पूजा, सत्कार किया, कैसे दिया, अपनी बुद्धि में अधोक्षज साक्षात भगवान को समझकर, अर्थात अतिथि को भगवान मानकर नंद बाबा ने गर्गाचार्य की पूजा की। इसी से सिद्धांत बना अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। अनर्च अधोक्षज दिया बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अतिथि का सत्कार भगवान की तरह करना चाहिए। भगवान हमारे घर पर जैसे आए हो उसी प्रकार, क्योंकि जब अतिथि का सत्कार करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यहां तक मान लो हमारे घर पर कोई भी आया हो, सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहिए। तब कुछ लोग प्रश्न करेंगे, यदि कोई चोर और डाकू आ गया तो, मुंबई में तो बहुत घूमते रहते हैं। तब शास्त्र कहते हैं, कहता है उनका भी स्वागत करना चाहिए, और ऐसा स्वागत करे कि वो भी झुक जाए, उनके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो जाए। बोले ऐसा कोई दृष्टांत इतिहास, बोले सबसे बड़ा इतिहास विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि का, आप जानते हैं ये कथा, बता देता हूं संक्षिप्त में और फिर अंत कर देता हूं। अतिथि का स्वागत, हमारे इतिहास में ये दोनों ऋषि मुनि बहुत बड़े हुए, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र। वशिष्ठ ऋषि जो थे वो सूर्य वंश में इक्ष्वाकु वंश के कुल पुरोहित बने, और विश्वामित्र भी भगवान राम के गुरु बने। परंतु बात यह थी, विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। क्षत्रिय परिवार में विश्वामित्र जी का जन्म हुआ, लेकिन उनकी इच्छा थी मैं ब्राह्मण बन जाऊं, और विश्वामित्र को ब्राह्मण बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी। बहुत, हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा तपस्या किसी ऋषि ने की तो विश्वामित्र। अनेकों बार तपस्या की और फेल हुई, तपस्या की फेल हुई। विश्वामित्र तपस्या करते, पहले हजारों वर्ष तक तपस्या की तो उनको कहा गया तुम राजर्षि हो, लेकिन इसको राजर्षि नहीं बनना था, इसको ब्रह्मर्षि बनना था। हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद देवताओं ने कहा तुम देवर्षि बन गए। बोले देवर्षि नहीं, मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। और हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या किए तो अंत में ब्रह्मा जी ने और सभी देवताओं ने कह दिया कि विश्वामित्र जी, जन्म भले आपका क्षत्रिय कुल में हुआ लेकिन हम आपको ब्रह्मर्षि मान रहे हैं। ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने कह दिया। आकाश में रहने वाले लोग उसको ब्रह्मर्षि मान गए, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोग कोई उसको ब्रह्मर्षि नहीं मानते। कहीं भी जाते थे तो ब्राह्मण लोग कहते थे आ गए क्षत्रिय, आ गए क्षत्रिय, और इनको बहुत बुरा लगता था। विश्वामित्र को कोई क्षत्रिय कह दे तो लगता था किसी ने गाली दे दिया मुझे। तब वो सीधा कहते तुम मुझे क्षत्रिय क्यों कहते हो? बोले हम सब के जो लीडर हैं वशिष्ठ जी, वो आपको क्षत्रिय मानते हैं, यदि वो आपको ब्राह्मण कह दे तो हम आपको ब्राह्मण कह देंगे। तो ये वशिष्ठ जी के पास गए, अरे आप मुझे क्षत्रिय क्यों मानते हो, मुझे ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हो, मैंने इतनी तपस्या की, ब्रह्मा जी ने देवताओं ने कह दिया। बोले आपके लक्षण नहीं है ब्राह्मण के। ब्राह्मण क्रोध करता है, आप इतना क्रोध करके बोल रहे हो, आपके लक्षण नहीं है, इसलिए आप में भी गुण हो तो मान लूंगा। तब इनको और क्रोध आया, और क्रोध, ईर्ष्या के मारे जल रहे थे विश्वामित्र जी। बोले इतनी तपस्या लेकिन फिर भी ये लोग मुझे क्षत्रिय कह रहे हैं। बहुत जलन हो रही थी, क्या करूं क्या करूं। तब विश्वामित्र जी ने प्लान बनाया, बोले यदि वशिष्ठ ऋषि को मार दूं, वशिष्ठ जी का गला काट दूं, तो फिर ये सब लोग मेरी अंडर में हो जाएंगे, तो फिर दुनिया के सब लोग फिर मुझे देवर्षि मान लेंगे, ब्रह्मर्षि मान लेंगे। प्लान बनाया, एक दिन तलवार लेकर वशिष्ठ ऋषि के घर पर चले गए। पूरा प्लान बनाकर आज तुम्हें मार ही डालूंगा, देखिए अतिथि का स्वागत है। अब हमारे घर पर मान लो कोई आते हैं, तलवार लेकर तो नहीं आते, ये तलवार लेकर आए थे ये अतिथि, लेकिन इसका स्वागत देखिए कैसे कर रहे हैं। विश्वामित्र जी हाथ में तलवार लेकर वशिष्ठ को मारने के लिए ही आए, और आकर बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे जगह थी वहां जाकर छुप गए, और सोचे कि जब वशिष्ठ जी पलंग पर सो जाएंगे तब मैं उसका गला काट दूंगा। तो जैसे तैसे कैसे भी करके वशिष्ठ जी को पता चल गया कि हमारे घर पे अतिथि आ चुके हैं। अब पता चला या नहीं चला ये शास्त्र में वर्णन नहीं है, लेकिन पता होगा या नहीं होगा, लेकिन स्वागत उनका ऐसे बहुत अच्छा किया। अब एकांत कमरा था, और उस कमरे के बाहर प्रांगण था, बिस्तर के नीचे विश्वामित्र हाथ में तलवार लेकर बैठे हैं, कब ये सोएंगे और गला काट दूं, और बाहर प्रांगण में वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति, ये दोनों बैठे हैं, एकांत हैं। अरुंधति अपने पति को कह रही है, पतिदेव कितना साफ आकाश है, और इस आकाश में आप पूर्णिमा के चंद्रमा को तो देखिए, कितनी सुंदर इनकी चांदनी है जो पूरे जगत को रोशनी दे रही है। इस प्रकार से दोनों शेर शायरी में बात कर रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी को कहा, एकांत में बैठे थे, अपनी पत्नी को कहा, क्या बताऊं प्रिय, ये चंद्रमा उसी प्रकार चमक रहा है जैसे विश्वामित्र की तपस्या चमक रही है। वो बैठे बैठे सुन रहे थे, देखिए वाणी से क्या नहीं होता है। ये चंद्रमा की चांदनी विश्वामित्र की तपस्या के तरह चमक रही है, और जैसे ये चंद्रमा की चांदनी इनकी किरणें तीनों भुवन को पोषण दे रही हैं, वैसे ही विश्वामित्र जी की तपस्या तीनों भुवन में रहने वाले सभी जीव का पोषण कर रही है। धन्य है विश्वामित्र, और धन्य है विश्वामित्र जी की तपस्या। तब उनकी पत्नी अरुंधति ने कहा, अरुंधति को पता नहीं था कि अतिथि आए, कहा पतिदेव यदि विश्वामित्र का आप इतना आदर करते हो, वे इतने महान है, तो फिर आप उसे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते हो, फिर भी आप उसे क्षत्रिय क्यों, उसे ब्राह्मण बोलना चाहिए ना। क्या कहूं पत्नी, क्या कहूं प्रिय, मैं तो उसे ब्राह्मण कह दूं, लेकिन अभी भी वो हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर घूमते हैं। मैं उसे ब्राह्मण कैसे कह दूं, और उसने देखा हाथ में तलवार थी। बोले इतनी इतनी तपस्या करके हैं ब्रह्मर्षि ब्राह्मण बनकर भी हाथ में शस्त्र लेकर घूमते हैं, बस इसी कारण मैं उनको नहीं कह रहा हूं। एकांत में अपनी पत्नी के साथ बैठकर रहस्य में जब विश्वामित्र की बात हो रही थी, विश्वामित्र ने देखा कि इतने बड़े महात्मा को मैं मारने के लिए आया, उनका हृदय गदगद हो गया और तुरंत वहां से बाहर निकले, दोनों हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तलवार को छोड़ गए और चरणों में गिर गए, और जैसे ही तलवार को छोड़े चरणों में गिरने गए, तुरंत वशिष्ठ जी ने उठा लिया कि ब्रह्मर्षि आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, ब्रह्मर्षि आपका स्थान मेरे हृदय में है। बोले आज आपने मुझे ब्रह्मर्षि कह दिया, क्यों? क्योंकि आपने ये तलवार को छोड़ दिया, इसलिए। अतिथि का स्वागत ऐसे करे कि यदि हमें मारने के लिए भी आया हो, गला काटने के लिए भी आया हो, तो हमारे चरणों में झुक जाए, हमसे प्रेम करने लगे। आज ऐसे तो अतिथि नहीं है कि हमें काटने के लिए आए, मारने के लिए। इसलिए रूप गोस्वामी वैष्णव को टेक्निक दे रहे हैं, यदि किसी वैष्णव के साथ, यदि किसी भक्त के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया हो, कुछ तकलीफ हो भक्त समाज में, तो तुरंत हमें उस भक्त को घर पर भोजन के लिए बुला देना चाहिए, या हमें उस भक्त के घर पर भोजन के लिए चले जाना चाहिए। और जब हम भक्त को हमारे घर पर बुलाते हैं और ऐसा स्वागत करें, ऐसा स्वागत करें कि वह भक्त सारी शत्रुता भूल जाए, वे सारी दुश्मनावट भूल जाए और प्रेम उत्पन्न हो जाए। क्योंकि ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, यही प्रेम का लक्षण है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। तो क्षमा कीजिए, भगवान का नामकरण तो नहीं हुआ, परंतु अतिथि सत्कार का सिद्धांत मिल गया। आप सबका धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे जय।